अब यहां से आगे बिल्कुल आखिरी टॉपिक, पारे का अख्तिताम। पूरे पारे में अल्लाह सुबहान तआला ने हमें बहुत कुछ सिखाया। जितनी बातें हुई आपके सामने हैं, हमने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक पढ़ी और पढ़ाई। अभी जिस मुकाम पे मैं खड़ा किया हुआ, यही बता दिया कि फिरका वारिया छोड़कर आमंतु बिल्लाही की बात करो और उस पे करो। कर करा के सब कुछ किया, अब क्या कहा? फाइन आमनु, बस अगर ये ईमान ले आए। कौन? लिख ले अहले किताब और आज के मुसलमान भी। मा मन तुम भी, जिस तरह के तुम ईमान लाए हो। अब ये किसको कहा जा रहा है? नबी सल्लम को अगर कहा जाएगा तो जमा का सीगा ना आता, तो सहाबा का ईमान। अगर ये बाद वाले, यानी आज हम सब और अहले किताब जो नबी सल्लम के दौर में थे, अगर वो वैसा ईमान ले आए जैसा ईमान तुम लाए हो, यानी सहाबे कराम तुम जैसा ईमान लेकर आए हो, तो फकद एहतदो, बस वो तहकीक हिदायत पा गए। कितना आसान है हिदायत का ये नुक्ता समझना। एक क्राइटेरियन बना दिया, एक सांचा, जिसको आप कह सकते हैं ना कि आपको किसी ने एक छोटा सा सांचा दिया और कहा बस इसमें बर्फ बनाते जाओ, हर टुकड़ी बिल्कुल दूसरी के बराबर होगी। तो उस हदीस सीरत नबी सल्लम की जात एक स्केल्टन है, एक ढांचा है, उसके अंदर जो डालते जाओगे वो कबूल होगा, जो बाहर होगी चीज वो रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन नहीं मानते, वइन तवल्लो, और अगर तुम मुंह फेरो, फाइन नमा हुम फी शिकाक, तो बस बेशक वो तो मुखालफत में पड़ गए। अल्लाह ने मेयार दे दिया था और अब शर्त, फाइन जो है ना, इन शर्ती है, इधर शर्त लगाई जा रही है, मुराद ये कि कंडीशन दे दी, अगर ये नहीं होगा, मुंह फेरते हो, नबी का नाम लेते हो लेकिन तरीके अपने, रास्ते अपने, तो याद रखो कि फसयकफीकहुमुल्लाह, फिर इनके मुकाबले में अल्लाह आपकी हिमायत को काफी है। वह हुवा समीउल अलीम, वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। जब सारा ही आवे कावा बिगड़ा हो ना, तो बंदे को अपने आप को चेंज करते होकर डर लगता है। खानदान छोड़ देगा, बिरादरी छोड़ देगी, दोस्त साथी मुझे छोड़ देंगे, तो फिक्र नहीं करो, सारे भी तुम्हें छोड़ देंगे ना कुरान सुन्नत में आने की वजह से, तो अल्लाह तुम्हें इस मामले में काफी हो जाएगा। तन्हाई होती है बंदे को अपने आप को बदलने के सोचने के साथ, तो अल्लाह बदल देगा। ये है वो आयत जिस पे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, जिनको एक बागी ग्रोह ने कैद कर दिया था, 40 दिन के भूखे थे और उनके घर का मुहासरा किया हुआ था, और एक दिन उठते हैं, बीवी से कहते हैं खाने को कुछ है? कहने लगी है तो कुछ नहीं, मैं देखती हूँ कुछ। इतने में हजरत उस्मान को ऊंघ आ गई और आंख लग गई। जब आंख उठी तो बीवी से कहने लगे कि मुझे ख्वाब में नबी सल्लम मिले और कहने लगे कि उस्मान, आज का रोजा तुम हमारे साथ इफ्तार करोगे। और इतनी देर में बागियों ने घर का दरवाजा तोड़ा और हजरत उस्मान को शहीद करना चाहा। बीवी बचाने के लिए आई तो उनकी ये उंगलियां कट गईं, और उस वक्त भी हजरत उस्मान के सामने कुरान था और उनके खून की छींटे इस आयत पे पड़ी हुई हैं। आज भी गालिबन तुर्की ही में म्यूजियम में ये कुरान मौजूद है, फसयकफीकहुमुल्लाह। जब लोगों ने आपकी कदर ना की, अल्लाह उनको बचा के वहां ले गया। कल अल्लाह ने किफायत की है, तो अल्लाह आज भी किफायत करता है अपने ईमान वालों की। वहुवा समीउल अलीम, वो खूब सुनता है और वो जानता है। यहाँ अल्लाह के नबी को भी तसल्ली दी जा रही है और हम सबको, आज के दौर के लोगों को, हक बयान करते जाओ, पैगाम पहुंचा दो, लोग माने ना माने अल्लाह आपकी मदद करेगा। करो क्या? सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग इख्तियार करो, रब्बानी बन जाओ। फमन अहसन मिन अल्लाह सिबगतन, और अल्लाह से ज्यादा खूबसूरत रंग किसका है? व नहनु लहु आबिदून, हम तो उसी की इबादत करने वाले हैं। अल्लाह के रंग में रंगो, अल्लाह वाले बन जाओ। ये है वही बात जिसको इय्याका नाबुदु कहा गया था, अबूदियत का रंग भर लो। यह लफ्ज़ सिबगा है, स्वाद बागैन, रंग को कहते हैं। रंग अरबी में दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक नेचुरल कलर, जैसे गाय भैंस बकरी का कुदरती रंग है, उसको लोन कहते हैं। कहाँ पड़ा है? मा लौनुहा। सिबगा कहते हैं आर्टिफिशियली चढ़ाया जाया रंग। जैसे डायर्स की मिसाल ले ले कि जब रंग की बात हो तो अल्लाह का रंग बनाओ, अगर इसको पढ़ा जाए तो ये इस तरह के कबिलना सिबगत अल्लाह, हमने कबूल किया अल्लाह का रंग। असल में तो इसके पीछे हिस्ट्री है, यहूद और नसारा पैदा होने वाले बच्चे को पीले रंग में नहलाते हैं और इसको बेप्टाइज करना कहते हैं। नसारा में तो बचपन में कर देते हैं। ज्यूस किसी को यहूदी कबूल नहीं करते, वो कहते हैं बोन यहूदी होना चाहिए। लेकिन इनके यहाँ एक रस्म है बिप्तिस्मा के नाम की, तो उसमें वो पीले रंग में बच्चों को डालते हैं और फिर कहते हैं अब ये ईसाई हो गए। एक सेरेमनी है। अल्लाह ने उसके मुकाबले में कहा ना तो पीला रंग और ना सब्ज रंग, रंग अल्लाह का रंग है। और वो कौन सा रंग है? जो इबादत के साथ आता है। आप अगर नोट करें तो पीछे से आयतें चल रही हैं, नहनु मुस्लिमून, मुस्लिमून का कई दफा तस्करा आया ना, यहाँ आबेदून आ रहा है, आगे जाके मुखलिसून आएगा, तो तीनों का फर्क बताऊंगी। यहाँ थोड़ी सी बात रंग की करेंगे। अल्लाह का बनने के लिए, अल्लाह वाला बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अल्लाह के रंग से क्या मुराद है? अल्लाह ताला एक ऐसा बंदा तैयार करना चाहते हैं जो हर रंग से आजाद हो, फिरका वारियत से आजाद, माशरे और वक्त के बदलते तकाजों से आजाद, मशरक और मगरब के रंग से आजाद। ये मेरा मशरक वाला रंग रूप है, ये मेरा मगरब वाला रंग रूप है, ये मेरा मस्जिद में जाने वाला ड्रेस है और ये मेरा पार्टी में और किसी मीटिंग में जाने वाला ड्रेस है। अल्लाह इसको पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला एक ऐसा गिरोह तैयार करना चाहते हैं जो हर रंग से पाक हो, आजाद हो, फितरत का रंग। आप देखिए कि लोग कहते हैं रंग से क्या होता है, अल्लाह चाहते हैं मुसलमान दिखे। और नोट कर लीजिए कि आज जितने मुसलमान दुनिया में मौजूद है, कई बिलियन, लोगों को कैसे पता चलेगा ये मुस्लिम है? उनके रंग से पता चलेगा। लोग कहते हैं रंग से क्या होता है, अंदर से फलां बड़ा नेक है। कोई सब्जी वाले के पास आके कहे कि मुझे तरबूज दे दो और उसको खरबूजा पकड़ा दे, कहते ले लो ये तरबूज है, वो कहेगा नहीं तरबूज नहीं ये खरबूज है, वो कहेगा अल्लाह के बंदे ये तरबूज है, वो कहेगा नहीं खरबूज है, कैसे? वो कहते नहीं रंग से नहीं होता, इसको काटो अंदर से ये खरबूजा ही होगा, कोई मानेगा? आप कहते हैं फ्रेश सब्जी दो, झुरियों से भरी हुई शिमला मिर्च को पकड़ा दे, वो कहता है ये बासी, कहता नहीं ले जाओ बाहर से कुछ नहीं होता, इसके अंदर से ये बड़ी फ्रेश है, कोई मानेगा? नहीं मानेगा ना। इसी तरह याद रखिए कि इस्लाम मुसलमान अपने रंग रूप से दिखता है। पहनते क्या हैं, बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, लाइफस्टाइल क्या है, जीते कैसे हैं, मरते कैसे हैं, शादियां कैसे करते हैं, आपका रंग रूप क्या है, आपका घर क्या दिखा रहा है, आपका ड्राइंग रूम क्या शो करता है, आपकी जिंदगी के अंदर किस चीज की अहमियत है, ये आपके इस्लाम के जाहिर से दिखती है। आज कितने मुसलमान हैं? चलिए मैं मिसाल देती हूँ, कोई मुझे आप नाम लें कि यहाँ कोई ऐसा पब्लिक इवेंट होता है जिसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब जमा हो, कोई इवेंट, कोई किसी मौके का, ठीक है? ये ग्लोबल पीस के नाम पे इन्होंने कहा। हम एक ट्रेन स्टेशन की मिसाल लेते हैं। ट्रेन स्टेशन ऐसी जगह होती है ना, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब जाते हैं। आप इस इलाके के ट्रेन स्टेशन पे देख लें, दिन में कई हजार मुस्लिम भी गुजरते होंगे, कई नॉन मुस्लिम भी। ये बताइए कि वहां से जितने मुस्लिम्स गुजरते हैं, क्या वहां मौजूद नॉन मुस्लिम्स को ये पता चल सकता है कि इनमें से किसने नमाज सुबह पढ़ी थी, किसने नहीं पढ़ी? नहीं पता चलेगा। रोजे का पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। हज करके आए हैं कि नहीं, कितना सदका करके आए हैं, नहीं पता चलेगा ना। किस चीज से पता चलेगा? उनके हाल हुलिये से पता चलेगा, उनके तौर तरीके से पता चलेगा, उनके अखलाक से पता चलेगा, उनकी आजजी मॉडेस्टी, उनको उनको पेश करना खाना, हॉस्पिटैलिटी, इससे पता चलेगा ना। तो क्या आज मुसलमान अपना ये रंग रूप दिखाना पसंद करते? जितना आज के दौर में शैतान ने मुसलमानों को लूटा है ना, वो ड्रेस कोड से लूटा है। आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कर दें, आज की औरतों को वही चुस्त और गंदे और नंगे लिबास पहना के जिसमें जिस्म का एक फिगर ना छुपे, उससे लूटा के आओ दिखाते हैं तुम किसके रंग में रंगे हुए हो। हम गैरों के रंग में रंग के आते हैं उनके मुल्कों में, हम तो अपने मुल्कों में बैठे हुए उनके रंगों में रंगे हुए, उनके मैगजीन देखते हैं और उनकी मॉडलिंग देखते हैं और उनकी अदाकारों और आर्टिस्टों को देखते हैं, किधर है रंग? जब मुसलमान अपने रंग रूप पे फख्र करेगा तो समझ लें ये वो गिरोह तैयार हो गया जो सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह। आप कहते नहीं नमाज तो पढ़ती है ना, वो मेरा बच्चा नमाज तो पढ़ता है, वो किसने देखनी है आपकी मेरी? वो तो मेरा और अल्लाह का मामला, वो वो तो आपके बच्चे का और अल्लाह का मामला है। चलते फिरते शहर में वो किन के इश्तेहार बने हुए हैं, हमारी कमाइयां वो भी सूद खाएं हम भी सूद खाएं, किसका रंग चढ़ा हुआ है, वो भी हराम खाएं हम भी हराम खाएं, वो भी ड्रिंक करें हम भी ड्रिंक करें, वो भी पार्टीज होटलों में बाएं हाथ से खाएं हम भी खाएं, किसका रंग चढ़ा हुआ है। याद रखिए इस्लाम कोई जाहरी रंग रूप का नाम नहीं है, इसके अंदर बंदे की पूरी शख्सियत का रंग है, अखलाक किरदार, उसकी आंखों में हया होती है। इसे सिर्फ ड्रेस कोड भी ना मुराद लीजिएगा, आप सर पे एक कपड़ा पहन के नीचे से जिस्म टाइट दिखा दें वो भी किसी दर्जे पे उसी में आएगा, और आप पूरे पूरे निकाब में चुभ जाएं और छिछोरी हरकतें करते फिरें वो भी इसमें आता है। ये तो असल में बंदगी का रंग है, आजजी का रंग है, और मुसलमान के चेहरे पे एक बंदगी होती है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह फतह में, अगर जिंदगी रही कि सहाबा कौम थे सीमा हम, उनके चेहरों पे तुम्हें इस्लाम की निशानियां दिखती हैं। आज भी आप आजमा के देखें, मैं किसी को हर्ट नहीं करती, ना मैं किसी का मजाक ना उड़ाती हूँ अल्लाह के हुक्म से, लेकिन आप कहीं भी राह चलते कि एक सच्चे मोमिन पे आपकी नजर पड़ जाए, बारिश चेहरा, उसके चेहरे के इत्मीनान और खुशी और आंखों में हया, और एक अल्ट्रा मॉड बिगड़े हुए यंग लड़के का हुलिया देखें, आपको दोनों में फर्क दिखता है, जमीन आसमान का फर्क दिखता है। सच्चा इस्लाम आंखों से दिखता है, नजरें झुकाने से दिखता है, चेहरे पे सुकून होता है, इत्मीनान होता है। अब करें क्या, रंग तो सब पे दूसरे चढ़ गए। तो आइए थोड़ा सा एक डायर के पास चलते हैं। आप सोचे कि एक रंग है, कपड़े पे रंग चढ़ा हुआ है सुर्ख, आप उसको सबज कराना चाहते हैं, क्या करेंगे? डायर को कहते हैं कि भाई इसको सबज कर दो, वो क्या कहेगा? पहले तो देखेगा कर भी सकते हैं कि नहीं, चढ़ सकते हैं ना, फिर रुकेगा, सबसे पहले इसका रंग उतारूंगा, सुर्ख पे ब्लीच डालेगा तो वो वाइट होगा, फिर उसको सब्ज करेगा, और अगर सुर्ख के ऊपर ही सबज चढ़ाएंगे ना आप, तो वो सब्ज नहीं होगा, वो पर्पल हो जाएगा। इसी तरह सबसे पहले हमें गैर रंग उतारने पड़ते हैं। ये जो आप कुरान पढ़ते हुए अंदर से गिल्ट महसूस करते हैं ना, ये रंग काट है, ये ब्लीच पड़ रहा है आपके ऊपर कुरान की आयतों का, जो पहले आपके ऊपर से वो सारी काई होती हैं। और याद रखिए हम में से हर एक किसी ना किसी रंग में चढ़ा हुआ है, सफेद तो कोई होगा, किसी पे बिरादरी का रंग, खानदान का रंग, मुआशरे का रंग, दौलत का रंग, सोसाइटी का रंग है चढ़ा हुआ है। एक वो है जो बिल्कुल एक मजहबी दीनदार माहौल में पैदा हुआ, जिसको इखलाक और इबादात के साथ माँ बाप ने बहुत अच्छा रेस किया, उनको कुरान पढ़ के कोई चुभन नहीं होती, वो तो मुस्कुराते हैं। आगे मुजाहिद जादा रही है सूरह नहल में गालिबन के कुछ है, वो कुरान सुन के हंसते हैं, खुश होते हैं, मुस्कुराते, कहते हैं वाह मेरे रब ने खैर उतारी, और किसी से पूछो क्या नाजिल किया तो उनको कुरान गले की फांस लगती है। जिस आयत पे अमल होता है उसको सुन के मुस्कुरा नहीं रहे होते अंदर ही अंदर, और जिस पे अमल नहीं होता तो झुरझुरी आ रही होती है, ये रंग कट रहा होता है। तो जिस चीज पे अमल नहीं होता, पहले तो कुरान हमारा रंग उतारेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो उसको भट्टी में डालता है, खाली पानी में घोल के रंग में सफेद कपड़े वाला दे दे, थोड़ी देर में घर जाएंगे देखेंगे तो वो रंग उड़ जाएगा, कच्चा रंग तो नहीं होगा, भट्टी में पकाता है। फिर अब देखिए वो रंग फ्रेस जो है ना, उसको पूरा डुबोता है, आप इमेजिनेशन में लाए, कपड़े का एक कोना भी बाहर रह जाएगा ना तो वहां रंग नहीं चढ़ेगा। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो क्या कर रहा होता है, यूं निकाल के ना, तो वो उस आग के पास जाके उसको सुखा के फिर मैच करता है आपके सैंपल के साथ। कुरान और सुन्नत से मैच करना पड़ेगा अपने आप को। फिर आप देखिए कि कुछ रंग ऐसे होते हैं कि जो रंग कच्चे ही रंग खूबसूरत होते हैं, फिरोजी, डार्क फिरोजी, एक दौर था कहते थे ये रंग सिर्फ कच्चा ही होता है, या इस तरह के मामलात में होगा, अब वो पक्का करेंगे ना थोड़ा सा डल होगा लेकिन पक्का तो होगा। तो बाज दफा कुफर के रंग बड़े पंपी, ग्लैमरी और खूबसूरत, एंड वॉर वॉर हाव भाव, लेकिन कच्चे रंग होते हैं, उसको पक्का करेंगे तो खूबसूरत नहीं होगा, लेकिन बहरहाल वो आपके कपड़ों पे नहीं लगेगा। फिर आप देखिए कि जो रंग चढ़ता है ना उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर, उसमें अगर आप एक रंग का कपड़ा बनाए ना यूनी कलर तो सादा सा लगता है, लेकिन आप उस कपड़े के ऊपर मल्टी कलर करवा लें, टाई एंड डाई, कई रंग कई नहीं, बहुत खूबसूरत लगता है, टाई एंड डाई बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह को जहर लगता है। रंग बिरंगा मुसलमान, इधर से क्रिश्चियनिटी का रंग, इधर से इस्लाम का, इधर से ज्यूइज्म का रंग, रंग रंग रंग, ये सारे रंग अल्लाह को तो कौन से अच्छे लगते हैं जो बिल्कुल प्लेन हो। फिर आप देखिए, अब ये सारी बातों को बाद में आप जब सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आपको सारी बात वैसी समझ आ जाएगी। बस दफा कपड़ा जल भी जाता है रंग डालने के बाद, बाद में छेद आ जाते हैं, कहते हैं जी कि इसमें तो बहुत ब्लीच डल गया, रंग डल गया। इसी तरह बाज दफा कुरान और दीन की तरफ जब आते हैं तो रूह में छेद पड़ते हैं। फिर एक और चीज देखिए कपड़े की खसूसियात में कि सबसे ज्यादा खुश अच्छा रंग किस पे आता है जल्दी, प्योर कपड़े पे, प्योर कॉटन, प्योर सिल्क पे रंग बहुत अच्छा आता है। जो रंग कहीं ना चढ़े दर्जी क्या कहते हैं, बाजी वो कपड़ा लेके आए, प्योर सिल्क लाएंगे तो आएगा। इसी तरह जिस बंदे की फितरत स्लीम रहती है उस पे कुरान बड़ी जल्दी रंग लाता है। और जिसने वैक्सिंग की हुई है, कुछ ड्रायर्स को आपने देखा होगा कि वो वैक्स लगा देते हैं कि यहां रंग ना आए, जब वो सारा दुपट्टा रंग के निकालते हैं वो जगह सफेद होती है। तो कुछ लोगों ने अपने ऊपर इतनी ज्यादा वैक्सिंग की होती है गुनाहों की जिंदगी और दुनिया के रंगों की कि वो उस पर आने नहीं चाहते। अब बाकी चीजें आप खुद सोचें, कल हम डिस्कशन में करेंगे, लेकिन अगर इस्लाम का और अल्लाह का रंग चाहिए तो कुछ चोट तो खानी पड़ेगी। ये जो आप इस वक्त कुरान सुन रहे हैं ये असल में भट्टी में पक रहे होते हैं, डिसिप्लिन के साथ, सब्र के साथ, भूख के साथ। इस्लाम भी कहलाता है बंदे को अंदर से अल्लाह ताला तोड़ता है। जब हमारे अंदर एक खूबसूरती का रंग आएगा ना फिर बात होगी। रंग चढ़ता किस पे? नहीं, काले रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता। इसी तरह जो इस्लाम की एक एक कमल से काला हो चुका हो, पूरी तरह एब्जॉर्ब कर चुका हो ना और इस्लाम को, वो ईस्ट में जाए वो नॉर्थ में जाए, अल्लाह कहते हैं कि ला शर्कियत वला गर्बिया, सूरत नूर में आप पढ़ेंगे, उस पे कोई रंग नहीं आता। वो अगर खुदा ना खास्ता किसी मौके पे नाइट क्लब के पास से भी गुजरेगा ना तो वहां भी अच्छी बात करके आएगा। ये जो हम आते ही तुम्हारा रंग बदल जाता है ना, कुछ को तो दूर की हवा पड़ती है तो पास पड़ा दुपट्टे पे कुछ ना कुछ रंग आ जाता है। ये हमारे रंग अच्छे हैं। आप कहते हैं बच्चों को कहाँ ले जाएं, सऊदी अरब ले जाएं, जहां मर्जी ले जाएं, अगर पहले ही रंग नहीं उतरे तो अगला नहीं चढ़ेगा। और आप इधर ही पाले रंग उनको इस्लाम का दे दें। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जौके खुदाई, जौके खुदाई का रंग दें अपने आप को और बच्चों को, फिर पूरी दुनिया आपके लिए काबा है इंशाल्लाह, और पूरी जगह आपके लिए मदीना मुनव्वरा है, तैयबा है। दिलों को पाक, सोचों को पाक करें, और तकवा के आने से इसका आगाज होता है। अब ये स्टेप्स हम कल डिस्कशन में करेंगे, लेकिन यहाँ सबक की आखिरी आयतें देख लेते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है कि अल्लाह के रंग में रंगे जाओ। लेकिन जब बंदा अल्लाह वाला बनता है ना तो लोग लड़ने लगते हैं, कहते हैं फनेटिक बातों में आ गई, फिर शुरू हो गई ईद के बाद क्लासें, आ जाके फिर उस्तानी बन रही है, फिर नसीहतें कर रही है। तो अल्लाह सिखाते हैं कुल तुहाजूनना फिल्लाह, इनसे लड़ना नहीं है, बस ये कहना क्या तुम हमसे लगे मामले में लड़ते हो, यानी मैं अल्लाह की बात मान रही हूं और आप मुझसे लड़ रहे हैं, मैं अल्लाह वाली बनना चाहती हूँ आप मुझसे लड़ते हैं। वहुआ रब्बुना व रब्बुकुम, वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, क्या आप मुसलमान नहीं है, आप कैसे इस्लाम नहीं है। वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, और आपके लिए आपके अमाल हमारे लिए हमारे अमाल, वनाहनु लहू मुखलिसून, और हम तो उसी के लिए मुखलिस हैं। बस हो ये रहा है कि आप मुखलिस बन रही हो, ये इखलास क्या है कल बताऊंगी डिस्कशन में, इसकी शायद 20 से 25 डिफरेंट तफसीरें हैं। लेकिन आप सिर्फ इस वक्त देखें, पहले मुस्लिमून, फिर आबेदून, और अब मुखलिसून। यही तीन स्टेप्स हैं आपके रंग के अंदर रंगने के। मुस्लिमून क्या था? कच्चे रंग वाले, इधर उधर के भटके हुए, नमाज रोजा था लेकिन अंदर कुछ नहीं था। बात माननी शुरू की, बात तो मानो, मुस्लिम तो बनो, सहाबा का तर्जा भी यही था, मुस्लिम बन जाते थे। समझ आए ना आए, कल देखेंगे आप किबले की तब्दीली, कोई समझ नहीं आई किबला क्यों तब्दील हुआ, मुड़ गए तो मुड़ गए, बंदा मोमिन भी ऐसा ही होता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर आबेदून, फिर इबादत में लज्जत आती है, और आखिर में मुखलिसून, सबसे कट के खालिस प्योर बंदा बंदा। बहुत वक्त लगता है, टाइम लगता है, लेकिन आ जाता है ये वक्त। और जिनके अंदर ये रंग नहीं लड़े होते हैं वो सिर्फ लड़ते हैं, नस्बतों पे नाम लेते हैं। इसलिए काम तकुलू न इन इब्राहिम अव इस्माइल अव इसहाक अव याकूब वल अस्बात अकानु हूदन अव नसारा, आप कहेंगे यह दोबारा आ गई, नहीं वहां उनका जुमला था कि यहूदी और नसरानी थे, यहाँ अल्लाह उनको एक किस्म की चोट लगा रहे हैं। अच्छा जी, तुम कहते हो कि इब्राहिम इस्माइल इसहाक और याकूब और उनकी औलादे यहूदी और नसरानी थे, हैरत हो रही है तुम पे, वो तो रब्बानी थे। कुल आन तुम आलम अमिल्ला, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह, मुराद ये कि अल्लाह ज्यादा जानता है। वमन असलम मिम्मन कतम शहादतन इंदहू मिन अल्लाह, और उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की तरफ से आई हुई गवाही को छुपाए। क्या गवाही छुपाते थे? नबी सल्लम की आमद की गवाही छुपाई उन्होंने, तौरात को छुपाया, शरीयत को आज छुपाए बैठे हम भी, कोई बात नहीं, आज का दौर है, ये करना पड़ेगा, ये मुश्किल नहीं, ये वो नहीं, ये कर ही नहीं सकते। तो दीन को उन्होंने छुपा लिया था। अल्लाह ताला इसी की बात करके कहते हैं कि तुम अपनी बातों पे खुद गवाह हो। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह इससे गाफिल नहीं है जो तुम अमल करते हो। दूसरों से छुप सकते हो, अपने आप से नहीं छुपते। और अब इन नबियों के साथ नस्बत पे जन्नत की उम्मीद छोड़ दो। आखिरी दफा कहा जा रहा है कि तिल का उम्मतन कद खलत, वो एक उम्मत ही गुजर गई, वो नबी थे, वो नेक लोग थे गुजर के। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए था वो जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुम कमाते हो। ये है वायद जिस पे मैंने कहा कि लोग अक्सर कोट करते हैं औरत और मर्द के कमाने पे, क्योंकि यहाँ लहा मुअन्नस के लिए, उम्मत के लिए जो आया, कसबत था उसके लिए आ गई, और लकुम मुजक्कर की जमीर है, माँ कसब तुमने कमाया। कहते देखो अल्लाह कह रहे हैं औरत जो मर्जी कमाए, मर्द जो मर्जी कमाए, हालांकि ये कसब कमाइयाँ नेकियों और बदियों की हैं। वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा जो वो अमल करते थे। यानी वो अच्छे कर गए या बुरे कर गए, तुम्हें ना उसका क्रेडिट मिलेगा ना तुम्हें उसका डेबिट मिलेगा। हर बंदा अपने अमाल के अंदर गिरवी है। तो आप देखिए कि पूरे सबक ने हमें एक सबक तो सिखा दिया है, रब्बानी बन जाओ। लोग क्या करते हैं, लोग किस रंग में रंगे हैं, लोगों को तुम्हारा कौन सा रंग अच्छा लगता है, क्या अच्छे क्या बुरे, हु केयर्स, ये देखो कि अल्लाह को मैं कैसी लगती हूँ। फिरकावारियत फैलती ही तब है जब हम लोगों की नजरों से खुद को देखते हैं। लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, लोग मुझे कितना लाइक करते हैं। आज ये दीन के जो इतने रंग बिरंगे एडिशन दिख रहे हैं ना आपको, नाम लेने को दिल नहीं करता, लेकिन इतने दिन है, इतने एडिशन है, उसकी वजह क्या है कि लोग अल्लाह वाला नहीं बनते। आज अगर अपनी मौत याद आ जाए ना, कब्र की पहली रात, तो सारे फिरकेबाजियां खत्म। लोग मुझे पसंद करते हैं कि नहीं, मैं कैसा लगता हूँ इन कपड़ों में, कफन सबका सफेद ही होता है, वो नहीं ब्रांडेड होता, उसके अंदर नहीं को बाजू कटे होते और उसके अंदर टांगों पे फाहे नहीं लगे होते, और वो भी कोई इतना सी थ्रू और टाइट नहीं होता कि मैयत कैसी लग रही है। कफन तो खुली चादर होती है, ऊपर डाल देते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारा दिल बदल दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता استغفرك واتوب اليك.
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ